शांति। आज की इस सुंदर वेला में हमारे बीच में हम सभी के लिए एक आदर्श मूर्त तेजस्वी स्वरूपा ऐसी हमारी आदरणीय उषा दीदी जी पधारे हैं। हम बहुत प्यार से दीदी जी का स्वागत करते, अभिवादन करते, अभिनंदन करते हैं। आप बचपन से ही बाबा के ज्ञान में हो। करीबन 1980 में आपने आपका जीवन बाबा की सेवा में संपूर्ण रीति से समर्पित किया। मधुबन बाबा की बेहद भूमि पर आप 32 साल से हो और अथक परिश्रम से आपकी एक सबसे बड़ी विशेषता सदा सदा के लिए यह रही है कि अथक परिश्रम से ज्ञान की गहराइयों में जाकर के और साथ साथ योग की अनुभूति के साथ आपने कई ऐसे विषयों को स्पष्ट करके दुनिया के आगे रखा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं सेल्फ मैनेजमेंट का कोर्स जो आपके द्वारा ही सारा तैयार हुआ और सारे विश्व के अंदर एक आध्यात्मिकता का नया स्वरूप आपने रख करके हजारों आत्माओं की सेवा के निमित्त बना यह कोर्स। और साथ साथ अभी हम सभी जानते हैं गीता का भगवान जो कि आप इतने उसमें जैसे विद्वता आपने पाई है, जैसे आप उसको स्पष्ट करते हो तो मैंने तो ये देखा है हजारों लोग बैठे हैं, एक के मन में भी कोई संकल्प नहीं आता, सब स्वीकार करते जाते हैं। हाँ बराबर, हाँ जी बराबर। तो ऐसे हमारे विद्वान स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा उषा दीदी से अभी हम सुनेंगे बिंदु रूप अवस्था। आदरणीय उषा दीदी।
ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि याद का सब्जेक्ट मुख्य है, क्योंकि यही याद के सब्जेक्ट के माध्यम से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, पाप दग्ध होते हैं। विकर्म विनाश होना और पाप दग्ध होना, साथ ही साथ बाबा ने कहा कि यह बहुत सहज सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों को कई बार मुश्किल आती है तो याद में ही आती है। ज्ञान सुनना आसान महसूस होता है, लेकिन योग में हमेशा कोई न कोई विघ्न आ जाता है। विघ्न माना कभी सुस्ती का झुटका आ जाता है, तो कभी बुद्धि योग बाहर भटक जाता है, कहीं और चला जाता है। और उसमें भी बाबा ने जैसे आज कहा बच्चे, यथार्थ याद, यथार्थ समझ के आधार पर याद करना बहुत आवश्यक है। बिंदु रूप अवस्था ही वो अवस्था है जिसमें जब स्थित हो जाते हैं तो यथार्थ याद हमारी बनती है। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर देखे कि बिंदु रूप बनने के लिए सबसे पहले बिंदु लगाना भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक बिंदु लगेगा नहीं तब तक बिंदु बनेंगे नहीं। बिंदु लगाना माना फुल स्टॉप लगाना, और फुल स्टॉप लगाने के लिए फुल स्टॉक जमा होना चाहिए, तो फुल स्टॉप लग सकता है। ज्ञान का खजाना हमारे पास इतना जमा हो कि जैसे ही बुद्धि योग बाहर गया कि तुरंत हम उसको मोड़ सके और बुद्धि योग को पुनः कोई न कोई श्रेष्ठ चिंतन दे दे, श्रेष्ठ दिशा दे दे वे, और फिर बाप में लगाए। तो इसीलिए बिंदु लगाना आवश्यक है। बाबा ने भी इसीलिए हम बच्चों को कहा कि बच्चे समय अनुसार परिस्थिति अनुसार तीन बिंदु में से कोई भी बिंदु लगा लो। कभी कभी दैहिक संबंधों में जब बुद्धि योग बाहर भटक जाता है, कोई देहधारियों की याद आ जाती है, तो उस समय कौन सा बिंदु लगाएंगे? उस समय आत्मा बिंदु लगा दो कि तुरंत उन देहधारियों को भी जिसकी याद आ रही थी या जहां बुद्धि गई, तो उस समय उन्हें भी आत्म रूप में देखना शुरू करो, और आत्म रूप में देखते हुए बिंदु लगा दो वहां। फिर जैसे ही हमारा मन, क्योंकि मन को भटकने के तीन द्वार है जहां से वो जाता है, एक तो संबंधों में जाता है, एक तो इच्छाओं में जाता है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, है ना, तो इच्छाओं के पीछे जाता है, और एक कोई ना कोई परिस्थितियों में या भयभीत हो जाते हैं या वो परिस्थिति पावरफुल हो जाती है, हिलाने वाली आ जाती है। तो ये तीन द्वार है मन बुद्धि को भटकने के लिए, और इसीलिए जब ये तीन द्वार से जाते हैं तो उसके लिए बाबा ने ये तीन बिंदु दिया है कि जब संबंधों में जा रहा है तो उस समय आत्मा बिंदु लगा लो, जब इच्छाओं के पीछे जाता है तो उस समय बाबा हमारा इतना बड़ा, जब बाबा मिल गया तो अप्राप्त नहीं कोई खजाना ब्राह्मणों के जीवन में। और इसलिए जब इच्छाओं के पीछे जाता है तो बाबा की याद, बाबा बिंदु लग जाए, क्योंकि ये तो मन को नहीं तो कहां का कहां उड़ा कर ले जाएगा, ये भी चाहिए, ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो हवाई किल्ले शुरू हो जाते हैं। बाबा बिंदु लगा लो, और जब जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई ऐसी बात आ जाती है जो अंदर हलचल क्रिएट करने वाली होती है, भयभीत करने वाली होती है, तो उस समय बाबा कहे कि उस समय ड्रामा बिंदु लगा दो कि ड्रामा में जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ड्रामा हर पल कल्याणकारी है, और जब ड्रामा हर पल कल्याणकारी है तो मेरा कल्याण करने की ताकत इन परिस्थितियों में थोड़ी होती है। मेरा अकल्याण कभी हो नहीं सकता है। बाबा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी और मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो इसीलिए बिंदु लगाना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये तीनों बिंदु इकट्ठे लगा दो, तीन ताला लग गया तो बुद्धि बाहर जाएगी नहीं। इसलिए ये तीन बिंदु लगा करके बुद्धि को एकदम लॉक कर दे, ताकि बुद्धि कहीं भी बाहर जाए नहीं। और फिर बिंदु रूप बन जाओ। बिंदु रूप बनना माना क्या, कैसे बनेंगे? तो बिंदु रूप बनना माना आत्मस्थिति में स्थित हो जाना। ये तो हम सभी जानते हैं, मानते हैं कि देही अभिमानी आत्म अभिमानी दो अवस्था है। देही अभिमानी कर्म करते समय जब हम कर्मेंद्रिय का प्रयोग करते हैं मालिक बन करके, तो उस समय देह भान होता है कि हमें ये कर्मेंद्रिय का प्रयोग करना है। तो मैं आत्मा इन इंद्रियों के द्वारा ये कर्म कर रही हूं, उसको देही अभिमानी कहेंगे। लेकिन आत्म अभिमानी माना हर कर्मेंद्रिय को भी समेट लिया और सिर्फ आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। आत्म स्वरूप में स्थित होना माना आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन जाना। यह है बिंदु स्वरूप अवस्था, कि जब मैं आत्म स्वरूप में स्थित हो जाऊं तो आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन जाती हूं। और एक एक गुणों की ऊर्जा जैसे मेरी अंदर विकसित होती जाती है और प्रवाहित होती जाती है, आत्मा जैसे सशक्त होने लगती है सातों गुणों से। परंतु ये अवस्था सहज तभी होगी जब हम सीधा बिंदु बनते ही, आत्म स्वरूप में स्थित होते ही मन बुद्धि को परमधाम ले जाते हैं। और परमधाम में बिंदु बाबा को अंतरचक्षु से देखते हैं, बाबा के सानिध्य में स्वयं को देखे। परमधाम में भी हर रोज अगर एक ही रूप से अगर जाएंगे बोर हो जाएंगे, इसलिए परमधाम में भी वैरायटी रूप है। अब आप सोचेंगे परमधाम तो है ही एक, तो वैरायटी रूप कैसा है, है ना? वैरायटी रूप कैसे है? तो पहला जो स्वरूप है, बाबा हमेशा कहते हैं मुरली में, बच्चे लाइट हाउस बनकर के बैठो, कि मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं। और लाइट हाउस बनकर के बैठेंगे, हल्की फीलिंग आएंगे, एकदम हल्कापन हो जाएगा। जैसे शरीर का भान समाप्त हुआ, मैं बिंदु बन करके परमधाम जा रही हूं, तो बिंदु का वेट कितना होगा? एकदम लाइट, और उसमें भी लाइट स्वरूप, है ना? तो जब लाइट स्वरूप में अपने आप को देखते हैं, और बाबा भी जैसे लाइट हाउस है एकदम, तो बाबा की सकाश लाइट के रूप में मुझे प्राप्त हो रही है, और मैं आत्मा अंदर से एकदम हल्कापन महसूस करती जाऊं। उस लाइट से ही जो ज्वाला प्रज्वलित होती है, बीज स्वरूप बाबा है, तो उस शक्ति से या उस लाइट की किरणें जैसे जैसे मेरे पास आ रही है तो फोकस, जैसे सूर्य की लाइट कैसे आती है और सूर्य की लाइट की तरह बाबा की भी पावरफुल वो लाइट की किरणें जैसे आ रही है और मैं आत्मा अंदर से एकदम हल्की होती जा रही हूं, क्योंकि मेरे विकर्म अनेक जन्मों के जो संस्कार है, अनेक जन्मों के जो संस्कारों के आधार पर किए हुए कर्म है जिसका बोझ महसूस हो रहा है, वो जैसे हल्का होने लगता है। और जैसे जैसे वो हल्का होता गया तो आत्मा एकदम अंदर से लाइट होती जा रही है। बाबा जब साकार में थे तो जब दादियां सुनाती थी कि बाबा के इतना अभ्यास किया हुआ था बाबा ने रात रात जाग करके इस बात को कि जैसे मैं लाइट का पुंज हूं, कि बाबा जब चल करके जाते थे तो ऐसे लगता था जैसे एक हवा का झोंका चला गया, ऐसा फील होता था। इतना बाबा के जैसे बॉडी का भी जैसे वजन ही नहीं है, ऐसे ही महसूस होता था, क्योंकि आत्मा इतनी लाइट हो गई थी। तो बॉडी भी ऐसा ही हो रहा था कि उस समय बाबा के सामने जाकर के जब खड़े भी होते थे तो बस बाबा के नैनों से, मस्तक से वो लाइट की किरणें जैसे आ रही है और हम बस उसी में जैसे भरपूर होते जा रहे हैं। बाबा कुछ बोले कहे ये भी नहीं होता था। तो इस तरह से फीलिंग आना कि जैसे सूर्य के सामने खड़े हो गए और इतनी पावरफुल शक्ति प्राप्त हो रही है, इतनी पावरफुल लाइट की किरणें मिल रही है। तो ये पहला स्वरूप परमधाम में। दूसरा स्वरूप जो परमधाम का है वो है माइट स्वरूप, शक्ति स्वरूप, कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, सर्वशक्तिवान बाबा की शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही है। लेकिन कैसे मिल रही है तो वो दृश्य ऐसा है कि जैसे शक्तियों की छत्र छाया में है। पहले में लाइट प्राप्त हो रही है सूर्य की तरह, दूसरे में जैसे बाबा ऊपर हम आत्माएं नीचे, और बाबा से जैसे शक्तियों की छत्र छाया, शक्तियों की किरणें छत्र छाया के रूप में, और उस छत्र छाया में मैं जैसे अपने आप को देखती हूं। बहुत सुंदर फीलिंग आएंगी उसमें भी, और ऐसे मिले महसूस होगा जैसे बाबा की शक्ति से जैसे वो विकर्म समाप्त हो रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं, और मैं एकदम शक्ति स्वरूप हूं। तो छत्र छाया, शक्तियों की छत्र छाया के नीचे बहुत सुंदर बाबा का एक गीत है कि अनंत किरणों की बाहों में जैसे बाबा ने हमें ले लिया है। अनंत किरणें हैं, लेकिन एक एक किरणें जो बाबा की है वो भी जैसे सर्व शक्तियों से भरपूर है, और वो सर्व शक्तियों की किरणों में मैं जैसे वो किरणों की बाहों में बाबा ने मुझे, मुझ आत्मा को जैसे समा लिया है। जिसके लिए बाबा कहते हैं कि भक्तों ने कहा कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। लीन हो जाना क्या मतलब था? मग्न हो जाना, और साथ ही साथ जैसे उस स्वरूप में समा जाना, खो जाना, है ना। बाबा की अनंत किरणों की बाहों में जब हम समा जाते हैं, खो जाते हैं, तो जैसे लवलीन आत्मा बन गई। दो सप्ताह पहले की बाबा की अव्यक्त मुरली थी कि जिसमें बाबा ने कहा एक है लव, लवली आत्मा, और एक है लवलीन आत्मा। कि लवलीन जब हम हो जाते हैं तो बाबा की अनंत किरणों की बाहों में परमधाम में बाबा ने जैसे मुझे समा लिया और उसमें मैं खो जाती हूं, मग्न हो जाती हूं, जिसको ही लीन अवस्था कहा गया। तो इसीलिए आत्मा परमात्मा में समा गई, ये जो कहते हैं, ऐसे नहीं फिजिकली समा जाती है, लेकिन इतना बाबा के याद में और वो शक्तियों में जैसे हम मर्ज हो जाते हैं, समा जाते हैं। तो इसीलिए भक्तों ने जब साक्षात्कार किया तो उन्हें ये महसूस होने लगा कि ये तो जैसे मिल गए, ये समा गए उसके अंदर, लेकिन वास्तव में ये हमारी उस बिंदु स्वरूप की अवस्था है। और इतनी शक्तिशाली स्थिति, माइट हाउस बन जाते हैं, स्वयं जैसे सशक्त हो जाते हैं, ऐसी फीलिंग में हम अपने आप को महसूस करते हैं, और जैसे और कुछ नहीं लेकिन इस स्वरूप में खोए हो रहो, समाए रहो और बस उसका आनंद अनुभव करते रहो, क्योंकि ये आनंददायी स्थिति है। कहते ना, आत्मा का सत्य स्वरूप कौन सा है? सत्य चित आनंद स्वरूप। तो बाबा का भी सत्य स्वरूप है सत्य चित आनंद स्वरूप, सत्य चित आनंद। पहला भाव कि हमारा चित्त भी आनंद स्वरूप हो जाता है, दूसरा हमारी चैतन्यता, आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है, तो आत्मा चैतन्य है, उस चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से ही होती है। आज मनुष्य जीवन में जब आनंद नहीं है, आनंद ही नहीं है, तो क्या कहते हैं? जिंदा लाश है, जिंदा लाश कहते हैं ना, क्योंकि आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, जीवन में खुशी नहीं है। जब खुशी नहीं तो आनंद कहां से होगा? क्योंकि खुशी फर्स्ट स्टेप है, आनंद लास्ट स्टेप है। इसीलिए कई ऋषि मुनियों ने भी उस आनंद का, परमानंद का अनुभव करना चाहा, लेकिन वो परमानंद की स्थिति का अनुभव जब ये माइट स्वरूप हो, उस माइट स्वरूप में महसूस होगा कि जैसे सर्व शक्तियों की किरणें जैसे बाहों बन करके जब हमें अपने अंदर समा लेती है, तो उस समय आत्मा कितनी आनंदित हो जाती है, क्योंकि उसको जैसे सब कुछ प्राप्त हो गया। अब ये दुनिया की कोई भी चीज हमारे मन बुद्धि को अपने तरफ खींच नहीं सकती है, और वो आनंद का अनुभव इतना अलौकिक, अति इंद्रिय सुख का, माने ये इंद्रियों से परे का सुख का अनुभव कराने वाला, जो बहुत ऊंची स्थिति है। इसीलिए बिंदु स्वरूप स्थिति में हर कोई जाना चाहता है, उसका अनुभव करना चाहता है, क्योंकि उसमें जो सुख और जो आनंद है वो और किसी में नहीं, और किसी अवस्था में नहीं मिलता है। इसीलिए इस अवस्था में हम समाना चाहते हैं, खोना चाहते हैं। और तीसरा स्वरूप है परम धाम का, कि परम धाम के अंदर उल्टा वृक्ष है। परमधाम में हमेशा आपने देखा होगा उल्टा वृक्ष है, पूरा आत्माओं का वृक्ष है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे आत्माएं आती जाएंगी तो अपने अपने स्टेज अनुसार वो उस स्थान पर चली जाएंगी, जितने लेवल की प्योरिटी उसने अपने अंदर है, सारी प्योर आत्माएं, लेकिन प्योरिटी में भी जैसे थोड़ा मार्जिन हर एक में, इतना अंतर होगा, तो इसीलिए वो उस अनुसार उस स्टेज पर या उस स्थान पर जाकर के बैठ जाएगी। जो सतयुग की संपूर्ण प्योर आत्माएं हैं वो वहां चली जाएंगी। तो उल्टी वृक्ष का बीज बाबा है, जो बाबा ऊपर है, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीन आत्माएं हैं, है ना? वो तीन भी एक ही आत्मा तो एक है, तीन पार्ट है। और उसके बाद लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण के बाद अष्टरतन, और अष्टरतन के बाद इस तरह से पूरा थूर बनने लगता है। तो उस वक्त अपने आप को भी बीज रूप बाबा के संग देखना, और जब बीज रूप बाबा के संग में बैठी हूं तो मैं भी बीज हूं। बीज माना जिसके अंदर सारे वृक्ष को समाने की शक्ति है, जिसके अंदर सारा समाया हुआ है। तो जिस तरह बाबा के अंदर सारे वृक्ष के आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, ऐसे ही हम भी बीज है। लेकिन मैं बीज कैसी हूं कि जिसके अंदर सतयुग से लेकर कलयुग तक का 84 जन्म का पाठ समाया हुआ है, मर्ज है। माना पूरा वृक्ष का आदि से लेकर अंत तक का पाठ जिसके अंदर समाया हुआ है, वो मैं आत्मा हूं। और इसलिए जब मैं वो आत्मा हूं तो सतयुग में जब हम आते हैं तो अलग आत्माओं के संग पाठ बजाते हैं, त्रेता में अलग आत्माएं हमारे संग पाठ बजाएंगी, द्वापर में कुछ और आत्माएं भी हमारे साथ पाठ बजाएंगी, और कलयुग में और आत्माएं भी है बहुत सारी जो सतयुग त्रेता में भी आने वाली नहीं है, लेकिन उनके संग भी मेरा पाठ तो है ना, पाठ तो है या नहीं है? तो जब मेरा पाठ आदि मध्य अंत का सारे कल्प वृक्ष के अंदर सभी आत्माओं के साथ, माना मेजॉरिटी आत्माओं के साथ, किसी के साथ नजदीक का, किसी के साथ दूर का, किसी के साथ कैसा पाठ तो होगा ना। एक शहर में भी बस रहे हैं तो उन शहरों की आत्माओं से भी पाठ है हमारा कुछ ना कुछ, तभी तो एक शहर के वासी बने हैं, कुछ तो होगा ना। ये हो नहीं सकता किसी को एक बार भी देख लिया तो जो आमने सामने दृष्टि का आदान प्रदान हुआ, तो दृष्टि का आदान प्रदान भी उतना तो लेन देन हो गया ना। तो इसीलिए उन सब आत्माओं के साथ भी मेरा कनेक्शन है। तो बीज रूप बाबा के संग बैठ करके फिर बाबा से वो सकाश लेकर के उन सभी आत्माएं जो बीज रूप में बैठी है वहां, उन सभी आत्माओं तक, माना पत्ते पत्ते तक मुझे वो सकाश पहुंचानी है। जैसे बाबा कहते हैं कि एक बीज को ही पानी जब देते हैं तो वो पानी जैसे सारे वृक्ष के लास्ट पत्ते तक भी पहुंच जाता है, उसका पोषण भी होता है। तो ठीक इसी तरह बीज रूप बाबा के संग में बैठी हूं और बाबा से सकाश प्राप्त हो रही है, और वो सकाश रूपी पोषण जैसे हर एक लास्ट आत्मा तक जा रहा है मेरे द्वारा, हर आत्मा तक प्राप्त हो रहा है, उस रूप में अपने आप को देखना और वहां से वो सकाश प्रवाहित होने देना हर आत्मा तक, ताकि हर आत्मा के साथ जहां भी जैसा भी दूर का नजदीक का जैसा भी पाठ है, उस पाठ के हिसाब से हम जैसे उन आत्माओं को भी अपना ऋण चुका रहे हैं। जो कोई भी जन्म का हमारा कोई भी हिसाब किताब रहा हुआ है तो उस बीज रूप अवस्था में बाबा के बाजू में बैठ करके, तो एक लाइट हाउस में बाबा के सन्मुख आमने सामने है, है ना, और बाबा से लाइट की किरणें ले रहे हैं। फिर शक्ति रूप में बाबा से नीचे और छत्र छाया बन करके आ रही है, और फिर बीज रूप बाबा के संग जब हम बैठते हैं तो बाबा के एकदम सानिध्य में बाजू में, और बाबा से वो शक्ति की किरणें, वो सकाश, जैसे सर्व प्राप्तियां जैसे पोषण के रूप में हम ले रहे हैं, और हमारे द्वारा लास्ट आत्मा तक, इस वृक्ष के लास्ट आत्मा तक भी वो पोषण जा रहा है, हर आत्मा को हम दे रहे हैं। बाबा हमारा दाता है तो हम भी दाता के बच्चे, वरदाता महादानी बन करके हम भी उनको, विधाता बन करके हम उनको दे रहे हैं। जितना देंगे, क्योंकि हम ही पूर्वज है, तो पूर्वज है तो पूर्वज आत्माएं जो है वो तो सारे वंशों को नीचे दे रही है सारे, तो बहुत सुंदर एक फीलिंग आएगी। नहीं तो अगर खाली बिंदु रूप तो कहेंगे बोर हो जाते हैं, बिंदु खिसक जाती है, बिंदु टिकती नहीं है, बिंदु जैसे बने नहीं बने और बस पूरा हो गया। लेकिन जब इस तरह से योग भट्ठी में हम होते हैं और विशेष लंबा समय तक योग अभ्यास करने का चांस मिलता है, तो उस समय इस फीलिंग में जब बैठते हैं कि मेरे द्वारा हर आत्मा को वो पोषण, बाबा का जो है शक्तियों का वो पोषण मिल रहा है, तो इस दुनिया में आकर के देना नहीं है, लेकिन परमधाम में ही हम उन आत्माओं तक देते हैं। आप सोचेंगे लेकिन वो आत्माएं तो नीचे पाठ बजा रही है, फिर हम कैसे दे रहे हैं उनको। बाबा ने कई बार मुरली में हम बच्चों को ये बात कही है कि बच्चे बाबा भले अगर नीचे भी होता है तो भी याद बाबा को परमधाम में ही करना है। हमेशा बाबा कहते हैं कि भले बाबा उस समय नीचे भी हो, लेकिन आप जब याद करो तो परमधाम में ही याद करो, है ना। ठीक इसी तरह वो आत्माएं भले नीचे पाठ बजा रही होंगी, लेकिन हमें उन आत्माओं को उस वक्त वहीं इमर्ज करके वहीं वो सकाश देने, क्योंकि वो समय वो आत्माएं रिसीव करने वाली स्थिति में होती है। नीचे जब वो पाठ बजा रही है तो वो रिसीव करने वाली स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि एंगेज है यहां पर, इसीलिए उनको भी ऊपर ही इमर्ज करते हुए उनको सकाश देना है, शक्ति देना है, पोषण देना है। और जब इस तरह से वो रस जैसे प्रवाहित होने देते हैं, कभी खुशी का रस, कभी आनंद का रस, कभी सुख का रस प्रवाहित होने दो उन आत्माओं को भी, वो दो, तब वो आत्माएं भी जैसे आपको सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ मुझे प्राप्त हुआ है आप लोगों से। तो इसीलिए बाबा कहे तुम पूर्वज हो, अपने आप को तने में देखो। तो नीचे इस वृक्ष को ऐसा सीधा इमर्ज करके तने में देखना मुश्किल होगा, बहुत सारे पत्ते हैं, बहुत सारा ये है, लेकिन जब ऊपर में देखते हैं तो उस समय तो सब आत्मा एकदम चमकती हुई ही नजर आती है। तो जैसे उस सूर से जैसे प्रवाहित होता है वो रस, और जैसे पत्ते पत्ते तक एक एक आत्मा तक वो पहुंच रहा है और उनको पोषण मिल रहा है, और वो आत्माएं भी बाबा का उस वक्त धन्यवाद करे, क्योंकि है बाबा की सकाश शक्ति जो मेरे द्वारा प्रवाहित हो रही है। क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं, बाबा कोई बाहर वालों को डायरेक्ट थोड़ी देते हैं। अभी दो तीन दिन पहले भी बाबा ने कहा बाबा तो अपने बच्चों से मिलता है, सौतेले बच्चों से थोड़ी बाबा बैठेगा मिलेगा। तो बाबा उन तक भी जो पहुंचा, अपना वर्षा तो पहुंचाएगा ना बाबा, तो आखिर फिर बाप तो सबका है ना। तो इसीलिए हम आत्माओं के द्वारा पहुंचाता है, क्योंकि उन्होंने तो बाबा को पहचाना नहीं है, तो इसीलिए हम ही उनके पूर्वज है। तो हमें उस वृक्ष के द्वारा उस तने में बैठ करके बाबा के साथ बैठ करके जैसे बाबा से लेते जा रहे हैं और हर आत्माओं तक पहुंचाते जा रहे हैं। तब वो आत्माएं भी अंदर में जब राहत महसूस करती है कि कहीं से तो मुझे राहत आ रही है, ऐसा लगता है मेरा ही इष्ट मुझे दे रहा है, तो उनको ये फीलिंग आएंगे कि मेरा ही इष्ट मुझे दे रहा है, मुझे अंदर से शक्ति दे रहा है, अंदर से खुशी दे रहा है। ये फीलिंग भले क्षणिक होगी, वो थोड़े समय के लिए होगी, लेकिन फिर भी अंदर से उसको यही महसूस होगा भगवान मुझे दे रहा है, किसी के द्वारा तो दे रहा है, ये फीलिंग आएगी। तो ये तीन स्वरूप है परम धाम में, कि जिसमें हम बिंदु स्वरूप होकर के, बिंदु के अलावा कुछ नहीं है, तीनों स्वरूप में है बिंदु रूप, लेकिन एक है लाइट हाउस, एक है माइट हाउस और एक है बीज रूप, तने में बैठना। और तीनों ही बहुत पावरफुल स्थिति है। जब तीनों स्वरूप से हम कभी कौन सा अनुभव करें, कभी कौन सा अनुभव करें, तब बाबा कहे यथार्थ रूप से जो याद करता है तब विकर्म भी दग्ध होते हैं और पाप कर्म भी विनाश होते हैं। विकर्म और पाप कर्म में अंतर है या नहीं है? विकर्म और पाप कर्म में अंतर है? क्या अंतर है? एक हाँ, माना विकर्म जब करते हैं तो मैं आत्मा अकेली कोई ना कोई विकारों के वशीभूत होकर के जब कर्म करती हूं तो उसको विकर्म कहा जाता है। लेकिन जब और आत्माओं के संग मिल करके विकारों के वश ही जब कोई कर्म करते हैं तो वो पाप कर्म का हिसाब बन जाता है, पाप कर्म बनने लगता है, क्योंकि दूसरी आत्माओं के संग, चाहे एक और आत्मा हो जिसके संग मैंने कोई विकर्म किया, माना मिलकर के किया, तो वो पाप का हिसाब बन गया, वो दो आत्माएं हो गई, या दस आत्माएं मिलकर के वो जब कर्म हुआ तो वो कर्म पाप कर्म हो जाता है। तो इसीलिए जब बीज रूप अवस्था में होते हैं तभी विकर्म और पाप कर्म दोनों दग्ध होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं विकर्म को विनाश करना है, पाप को दग्ध करना है, विकर्म को विनाश करना है और पाप को दग्ध, क्योंकि अनेक आत्माओं के संग हुआ है, तो जितनी आत्माएं कनेक्टेड है उस पाप कर्म में, है ना, तो वो ऐसा एक हिसाब है जो बड़ा कड़ा है। और वो कड़ा होने के कारण ही उसकी जब भोगना भोगनी पड़ती है तो बहुत कड़े रूप में हमारे सामने आती है, है ना। तो इसीलिए पाप को दग्ध ही करना पड़ता है, विकर्म को विनाश करना पड़ता है। तो विकर्म स्वयं में, जैसे मैंने किसी पर गुस्सा कर दिया, विकर्म बन गया, या मैंने झूठ बोल दिया बिना कारण से, बिना मतलब से झूठ बोल दिया, ये विकर्म बन गया। लेकिन पाप कर्म किसी के साथ मिलकर के, जैसे दो व्यक्ति मिलकर के किसी का खून करता है, दो व्यक्ति मिलकर के या चार व्यक्ति मिलकर के जैसे किसी चोरी करते हैं या खून करते हैं या जो ऐसे कर्म करते हैं, तो ये पाप कर्म, और पाप कर्म बड़ा कड़ा हो जाता है। हाँ, लेकिन हाँ, वो जब अकेला व्यक्ति करता है तो उसका विकर्म बन गया, लेकिन जब किसी के साथ मिलकर के जो प्लानिंग से, जैसे सारा साजिश बना करके जब करता है तो वो पाप कर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें कई आत्माएं जुड़ गई, और जब वो सारी आत्माएं जुड़ गई तो सबका आपसी हिसाब बहुत बड़े रूप में होने लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं विकर्म विनाश और पाप को दग्ध करना है। विकर्मों को विनाश करने के लिए दो तरीका है। एक तो हम योग अग्नि के द्वारा भी उसको विनाश कर सकते हैं, दूसरा उसके अगेंस्ट में कोई अच्छा कर्म करे तो भी उसका विनाश कर दिया। किसी को दुख दे दिया मैंने कुछ बोल करके, लेकिन उसके कॉन्ट्ररी मैं जाकर के उससे माफी भी मांग लेती हूं और उसके ऊपर से कुछ उसको सुख देने का कार्य कर देती हूं, तो वो विकर्म विनाश हो गया। तो जो अकेले में किया है उसको विनाश करना आसान है, लेकिन जो मिलकर के मैंने पाप कर्म किया उसका चुकाने का जब समय आता है, तभी भी वो चार व्यक्तियों का जब योग बनता है और तब उसका इतना कड़े रूप में उसको चुकाना पड़ता है, वो बहुत मना भारी हो जाता है। इसलिए आत्मा बहुत भारी है, क्योंकि हमने पाप कर्म भी बहुत किए हैं मिलकर के, और विकर्म भी हमसे बहुत हुए हैं, लेकिन फिर भी विकर्मों को चुकाना आसान है, पाप कर्म को चुकाने समय धर्मराज की जैसे सजा जो है वो पाप कर्म के लिए है, जिसमें से गुजरना पड़ता है और जिसकी भोगना बहुत कड़ी है। इसीलिए बाबा कहे कि अगर कोई ऐसा विचार आता भी है विकर्म का, अभी बाबा के बच्चे बनने के बाद तो कोई पाप कर्म नहीं करते है ना, पाप कर्म तो करना ही नहीं है बाबा के बच्चे बनने के बाद, लेकिन कोई विकर्म का भी अगर संकल्प विकल्प आया भी विकल्प के रूप में, तो भी उसको वहीं समाप्त कर दो, वो विकर्म तक इंद्रियों तक ना आए, वो विकर्म इंद्रियों तक ना आए, इसका ध्यान रखना है। यहां संकल्प तक अगर तूफान के रूप में आ भी जाए, लेकिन फिर भी उसको वहीं समाप्त कर देना, इंद्रियों तक वो करने तक न आए। तो इसीलिए विकर्मों से फिर भी बचा जाता है, कि जैसे ही अगर कोई विकल्प तूफान के रूप में आया भी और बाबा की मुरली सुन ली, तो बाबा ने उस दिन जवाब ऐसा दे देता है बाबा मुरली के अंदर, कि वो संकल्प में जो तूफान खड़ा भी हुआ उसी समय शांत हो जाता है, हो जाता है ना, है ना। तो इसीलिए जैसे बाबा कई बार कहते हैं मुख में मुलरा डाल दो, आपको गुस्सा आया ना, मुख में मुलरा डाल दो, है ना, या बाबा की मुरली भाई कल गुस्सा कर लेंगे, शाम को गुस्सा करेंगे उस व्यक्ति के ऊपर, बाबा की मुरली सुन लो, तो क्या होगा, वो विकर्म से बच जाते हैं। तो इसीलिए बाबा बार बार हम बच्चों को कहते, बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि मुरली मिस किया तो वो विकर्म जोर से उभर के आ जाएगा, जोर से हो जाएगा, लेकिन अगर मुरली बीच में आ गई तो वो विकर्म होने से बच जाएंगे। तो विकर्म और पाप कर्म, तो बाबा कहे अब इसकी गुह्य गति समझते हुए, अब पाप कर्म तो बिल्कुल हमसे होने नहीं चाहिए, बिल्कुल पाप कर्म नहीं होने चाहिए, और उसको दग्ध करने का फिर एक ही तरीका, जो हो भी गए हैं पास्ट में उसको दग्ध करने का एक ही तरीका है, कि बिंदु रूप अवस्था में जाकर के और बाबा से इतनी सकाश शक्ति ले और उस विकर्म पाप कर्म को जैसे जला दे, हम जलने की फीलिंग आए तो इतनी मैं आत्मा पावरफुल स्टेज में आ जाऊं जो उसको जला दूं मैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं जब ज्वाला प्रकट होती है तो ज्वाला ही उसको नष्ट, तो लाइट हाउस वाली स्थिति जो है वो ज्वाला प्रकट करती है, बीज रूप वाली स्थिति तो पोषण देती है सब आत्माओं को, लेकिन जो लाइट हाउस वाली स्थिति है वो ज्वाला प्रकट करती है, और वो ज्वाला जब प्रकट करती है तो उसको नाश कर देती है, दग्ध कर सकती है, वही स्टेज है जो दग्ध कर सकती है। बाकी जो सर्व शक्तियों की छत्र छाया में, तो अपने आप को जैसे सशक्त कर लिया मैंने, भरपूर कर लिया, इतना भरपूर कि मेरी आंख फिर और कोई चीज में भी डूबे नहीं, इतना भरपूर मैं अपने आप को कर लेती हूं, ठीक है ना। तो ये है परमधाम में भी वैरायटी अनुभव करने के लिए कैसे कैसे याद का स्वरूप हमारा होना चाहिए और उसमें कैसे ये दग्ध होने का अनुभव, पोषण देने का अनुभव, ये हमें जैसे हर आत्मा तक पहुंचाना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। लास्ट डोज पावरफुल मिल गया, लास्ट डोज पावरफुल हो गया ना।
कुछ पूछना है दीदी से बिंदु रूप अवस्था के बारे में? या क्लियर हो गया? एकदम हो गया, एकदम क्लियर।
नहीं नहीं, हरेक को होगा। चार व्यक्ति ने मिलकर पाप कर्म किया तो उसका दर्द भी हरेक को ही भोगना पड़ेगा। कोई ये नहीं कि एक ने भोग लिया तो तीन छूट जाएगा। हाँ, वो तो भोगना पड़ेगा उनको, तो उनको तो भोगना पड़ेगा। माफी मांगो या ओ फिर रहा है तो इसलिए उसको सकाश दो। बाबा कहते हैं उसको इतना आनंद की फीलिंग में ले जा करके उसको आनंद का रस दो। वो तो सूक्ष्म वतन की फरिश्ता रूप में आप जाकर के बैठते हो ना ग्लोब पर, नहीं उससे भी कर्म विनाश नहीं होते। नहीं, माफी भले मांग लिया उस समय सूक्ष्म स्वरूप को धारण करके, लेकिन उससे विकर्म विनाश नहीं होता है। वो बात अलग है कि आपने माफी मांग लिया, फिर उसके बाद जैसे बाबा से भी हम माफी मांग करके जैसे उसको प्रायश्चित करते हुए उसको दग समाप्त करें ना, उसका बदले में इतना सुख भी अगर दे देवे हम, खाली माफी मांगने से नहीं चलता है ना, है ना। हाँ, तो वो तो बीज रूप स्टेज में उस आत्मा को शक्ति मिल रही है ना, वो वहीं से तो पोषण खींचता है। पता नहीं है भले, लेकिन हम जब उस स्टेज में बैठते हैं तो उसको प्राप्त होता है, उस आत्मा को मिलता है, है ना, आत्मा को मिलता है। क्योंकि उस समय उस शरीर को भी नहीं देख रहे हैं हम, आत्मा को ही देख रहे हैं, आत्मा रूप में ही उसको दे रहे हैं, तो पोषण मिल जाता है उसको। हाँ, वो मांगते हैं अपने इष्ट से, और अगर हम ही उसके इष्ट हैं और हम जब उस बीज रूप स्वरूप में बैठ करके जब पोषण दे रहे हैं तो हमें तो मालूम नहीं, लेकिन वो खींच लेता है हमसे। अभी अभी एक बजे टाइम नहीं है, सो जाएंगे सब, है ना।
चलो, ओम शांति।
शाम का समय होता था तो जरूर करा लेते।
उषा दीदी का हम दिल से थैंक्स करते हैं, क्योंकि विषय बहुत ही गहरा था और ये भट्टी का हमारा लास्ट दिन, और लास्ट दिन में पावरफुल हम सभी को डोज प्राप्त हो गया, और इसी के आधार से हमारे जीवन के अंदर हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिर से दीदी का धन्यवाद मानते हुए हम सभी दीदी की, तो हमें अचानक लॉटरी मिल गई। दीदी का पहले दिन ही क्लास रखने का था, लेकिन दीदी को और जगह पर सेवा के लिए जाने का था, लेकिन आप सभी के लिए शायद कैंसिल हुआ और दीदी का क्लास हमें मिल गया। चलो, अभी बाबा को याद करेंगे।
अपनी अनंत किरणें बाएं सा